दान कर तो तू महादान कर, वतन पर अपना कर्ज अदा कर। मतदान दिवस है आज का दिन, चल निकल आज तू मतदान कर। वतन का भी तुझ पर हक है, तेरे हिस्से का बाकी ये कर्ज है। काबिल को उसका हक अदा कर, चल निकल आज तू मतदान कर। अभी नहीं जागा तो कर्ज रह जाएगा, देश गलत हाथों में चला जाएगा। अपने स्वार्थ का तू आज त्याग कर, चल निकल आज तू मतदान कर। कवि अजय आवारा जी ने इन पंक्तियों में मतदान के महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से बयां किया है। लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि मतदान से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। मतदान हमारे पास वो जरिया है जिसके द्वारा हम ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं जो देश को विकास की राह पर ले जाएं। परंतु ये तभी संभव हो सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक मतदान के महत्व को समझे और अपने विवेक से सही प्रतिनिधि का चुनाव करे। वोट देना हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। इन सब बातों पर मंथन करने के लिए आज हमने डॉक्टर भारत को आमंत्रित किया है, जो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में कानून के प्रवक्ता हैं, तथा उन्हें अध्यापन एवं शोध कार्यों का भी गहन और व्यापक अनुभव है। शोध कार्यों पर पैनी दृष्टि रखने के कारण आपके लेख प्रतिष्ठित कानूनी व बहुविषयक शोध पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने दो पुस्तकों का सह संपादन भी किया है। शैक्षणिक कर्तव्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ आप काफी समय से ज्वलंत संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में व्यापक लेखन कर जागरूकता के साथ साथ जनता में संवेदनशीलता बनाने के अथक और सफल प्रयास करते आए हैं। आकाशवाणी से भी आपकी वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं। आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 2020 में SS राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था और आपकी कार्य के प्रति लगन व कर्म निष्ठा को देखते हुए आपको पंजाब सरकार के तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय में विशेषज्ञ के रूप में भी संलग्न किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर डॉक्टर भारत के ओजस्वी विचार सुनते हैं। नमस्ते डॉक्टर भारत, चुभन के पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है सर।
नमस्कार मैडम, आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को वंदन और अभिनंदन।
जी सर, आपका भी स्वागत है। और सर कैसे हैं आप?
बिल्कुल स्वस्थ है मैडम। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया का है। तो आपके आशीर्वाद से, आपके सभी श्रोताओं की शुभकामनाओं से हम भी स्वस्थ हैं और ये कामना करते हैं कि आप और आज हमारे इस कार्यक्रम के सभी श्रोता भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे और हर प्रकार से संपन्न होंगे।
जी सर, आपकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर साहब हम लोग कार्यक्रम शुरू करें।
जी मैडम,
जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भी एक है, फिर भी ये एक युवा राष्ट्र है। तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि संवैधानिक लोकतंत्र क्या है।
जी, जहाँ तक संवैधानिक लोकतंत्र की बात है,
जी,
हमारे देश में सर्वोच्च कानून हमारे देश का संविधान है, जिसको कि हम भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं।
जी।
और इसी संविधान के प्रारूप के अनुसार हमारा देश भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत देश है। इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वह संविधान के खंड 15 के तहत आती है।
जी।
खंड 15 के अनुसार हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंतर्गत चुनाव की पूरी प्रणाली भारतीय संविधान में प्रदान की गई है।
जी।
इस प्रणाली के माध्यम से हम यह देखते हैं कि भारत के संविधान के द्वारा एक भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जिस भारतीय निर्वाचन आयोग को आम भाषा में चुनावी आयोग के रूप में भी जाना जाता है।
जी।
जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव का अधीक्षण, चुनाव का निर्देशन और चुनाव का नियंत्रण भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। जब भी देश में किसी प्रकार का कोई चुनाव होता है तो अनुच्छेद 324 के तहत ये सारी शक्तियां जिसके माध्यम से हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे चलती है, बढ़ती है, लोकतंत्र की जय जयकार होती है, वह इसी वजह से होती है क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना भारत के संविधान के द्वारा की गई है और इस संविधान को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस आयोग को हमने किसी कानून के अंतर्गत नहीं अपितु भारत के संविधान के तहत बनाया है, जिसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं।
जी।
और यह जो आयोग है, यही आयोग इस बात का ध्यान रखता है कि जो चुनाव हो वह किसी भी प्रकार से बिना भेदभाव के निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ होए, ताकि जन जन की आवाज, जन जन की इच्छा, उनके मन का जो मत है वह सरकार के रूप में हमारे इच्छाओं को पूरा करे, अपने घोषणा पत्र में कही गई बातों को पूरा करे। क्योंकि हम इसको संवैधानिक दर्जा देते हैं और यह लोकतंत्र है, तो इस संवैधानिक निर्वाचन आयोग के द्वारा आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी बनाया है, जो कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी, जिज्ञासा या कोई प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, कोई शिकायत, समस्या का समाधान चाहता है, तो वह उस टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी शंकाओं को दूर कर सकता है, अपनी बात इस संवैधानिक मंच तक पहुंचा सकता है और वह टोल फ्री नंबर है 1950 1950।
अच्छा।
जहां तक कि हम इस अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत के संविधान में प्रदान की गई है वह है कि जब भी चुनाव हो तो किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।
जी।
वह भेदभाव चाहे धर्म को लेके हो, चाहे जाति को लेके हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, किसी भी प्रकार से हम नहीं चाहते कि कोई भी मतदाता को किसी भी रूप से प्रभावित कर सके और उसकी मन की इच्छा, उसके मत का प्रयोग करने में किसी प्रकार का प्रलोभन दे सके। इसके लिए हम यह देखते हैं कि हमारे संविधान में एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो चुनाव है वह निष्पक्ष हो, जनता की आवाज सरकार बनाने में अपना योगदान दे और तभी उस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश में लोकतंत्र को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अभी हमने एक संवैधानिक आयोग का गठन किया है और चुनावों को निष्पक्ष रूप से करवाने का जो हमने संकल्प लिया था वह आज सिद्धि की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।
जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चुनाव में लोगों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
जहां तक चुनाव की बात है तो लोकतंत्र में मैं कुछ शब्दों की जुगलबंदी के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र और लोकराज इनका आपस में बहुत करीब का संबंध है। लोकतंत्र लोकराज से चलता है। लोकतंत्र जो है वह लोगों की आवाज होती है और लोगों की आवाज जो है वह लोकलाज को ध्यान में रखती है। तो लोकतंत्र के माध्यम से लोकराज और लोकराज के माध्यम से लोकलाज का जो विषय है वह सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी चुनाव की प्रक्रिया में एक मतदाता के रूप में भाग लेते हैं तो हम एक लोकराज की स्थापना की बात करते हैं। वह राज किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, वह राज किसी राजनीतिक विचारधारा का नहीं होता, अपितु जो भी बात विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से, अपने शपथ पत्रों के माध्यम से जनता के बीच तक पहुंचाई थी, उन सभी बिंदुओं को केंद्रित करते हुए लोग अपना मत का प्रयोग करते हैं और उस मत के प्रयोग से लोकतंत्र में लोकराज आता है, लोकराज स्थापित होता है। और यह धर्म उस लोकराज का बनता है कि वह लोगों की लाज, लोगों की इच्छा, उनके सपने, उनकी जो एक स्वरूप उन्होंने घोषणा पत्र के माध्यम से देखा था वह लोकलाज के रूप में सुरक्षित रहे, उनको हर प्रकार की सुरक्षा मिले। यह जब लोकतंत्र की बात होती है तो लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होता है। जब भी सरकार का गठन हो, चाहे वह प्रदेश के स्तर पे राज्य सरकार का गठन हो या केंद्र के स्तर पर देश की सरकार, भारत की सरकार का गठन हो, तो सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, सरकार का सरोकार जो है वह जनता की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का होना चाहिए, उनका सरोकार जन इच्छाओं को पूरा करने का होना चाहिए, जन समस्याओं को दूर करने का होना चाहिए। जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह मतदान करे। अब जो ये मतदान का शब्द है, यह दो शब्दों के मेल से बना है, मत और दान। जो मत शब्द है उसका अभिप्राय अपने विचार से है, अपनी राय से है, अवधारणा से है, सूझबूझ से है। हम अपनी इच्छा शक्ति को केंद्र में रखते हुए किस राजनीतिक दल को सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए हम अपने मतदान को इस्तेमाल करते हुए सरकार को चुनते हैं, जिसके लिए हम चिंतन करते हैं और उस चिंतन के माध्यम से हम चेतना पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी हम लोगों की भूमिका को ध्यान में रखते हैं तो भारत देश के अंदर एक बहुत ही अनूठा गौरवमयी वाक्य हमें देखने को मिलता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वन मैन वन वोट वन वैल्यू। हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है और हर वोट एक वैल्यू है अपने आप में, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई पिछड़ी जाति से आता है, चाहे कोई अग्रणी समाज से आता है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई युवा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, हर व्यक्ति के पास एक वोट होता है। और वह वोट जो है, वह वोट इस बात का प्रतीक है कि हम सब एक हैं, चाहे कोई किसी भी पद पर हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, कितना भी उसका प्रभाव हो, हर व्यक्ति के पास एक एक वोट है और उसकी एक वैल्यू है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हर व्यक्ति का जो मत है वह एक पर आकर सीमित हो जाता है, इसीलिए हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण चुनावी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं।
जी।
बहुत ही बोलचाल की भाषा में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सर समझाई ये बात हमें। और डॉक्टर साहब, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। शायद हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस बात को कि अमेरिका, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसने स्वतंत्रता के 150 से अधिक वर्षों के बाद इस अधिकार को अपने नागरिकों को दिया।
जी मैडम जी।
तो हमें मंथन करना चाहिए कि हमें कितने बड़े अधिकार की प्राप्ति हुई हुई है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि मत और मताधिकार का क्या मूल्य क्या है हमारे लिए, क्या वैल्यू है इसकी?
जी मैडम, जब हम मत और मताधिकार की बात करते हैं और उसके मूल्य की बात करते हैं, मैडम आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा, लोकतंत्र को हम अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं और उसी रूप से जानते हैं, समझते हैं।
जी।
जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में डायलॉग से होता है, डिबेट से होता है, डिस्कशन से होता है, डेलिब्रेशन से होता है, और इन सब के साथ साथ डाइसेंट से भी होता है।
जी।
तो हमारा मत किसी के पक्ष में है या किसी के विपक्ष में है, हम किसी के हक की बात करते हैं या किसी राजनीतिक दल से अपनी आस्था नहीं रखते, उनके घोषणा पत्र से सहमत या असहमत हैं, यह हमारा मत है, यह हमारा विचार है, यह हमारी अवधारणा है, यह किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। परंतु हमारे देश में जो मताधिकार का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, उसके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब भी हम मत अधिकार का प्रयोग करने जाते हैं, तो वह एक तरह से बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आज की तारीख में प्रचलित रूप से प्रयोग की जाती है हमारे देश में, चुनावों की प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने के लिए, चुनावों की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार के गठन के लिए, इन मतों को गिनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वह ईवीएम की जो बटन दबाने की प्रक्रिया है, वह एक गुप्त प्रक्रिया है। बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम जिस दल की, जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को अपना मत देना चाहते हैं, वह अपने मन तक रख के बिना किसी को बताए भी, बिना किसी के प्रभाव दबाव के भी हम रख सकते हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे देश को युवा देश का दर्जा प्राप्त है, जिसको कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। जहां एक और हम यह कहते हैं कि हमारा देश एक युवा देश है, क्योंकि हमारे देश में 67% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है। जब इतने बड़ी जनसंख्या एक युवाओं की है, तो हमारे को उम्मीद होती है कि युवाओं के अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि हम इस चुनाव की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि हमारा देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। परंतु हम यह देखते हैं कि जहां एक और डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के बावजूद हमारे देश में डेमोक्रेटिक डेफिशिएट भी है। जो सरकारें चुनकर आती हैं, उन सरकारों की गठन में जो योगदान लोगों का, जनसंख्या का, मत का प्रयोग किया गया है, कई बार वह 50% से भी कम जनसंख्या ने अपने जनप्रतिनिधि को चुना होता है।
जी बिल्कुल।
इन देखते हैं कि हमारे देश के मतदाताओं में एक मत को लेकर जो उत्सुकता होनी चाहिए, जो उल्लास होना चाहिए, वह नहीं है, तो वह एक खेद का विषय है, जिसको कि मैं डेमोक्रेटिक डेफिशिट के रूप में अपने श्रोताओं को बता रहा हूँ। हम यह कहते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत एक संशोधन किया गया था, जिस संशोधन के माध्यम से हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को तब्दील किया था। अनुच्छेद 326 के माध्यम से हम यह बात बताते हैं कि एक व्यक्ति कब मताधिकार का प्रयोग करने के लायक होगा। तो सन 1988 से तक हमारे देश में जो कानून था संविधान के माध्यम से, वह कहता था कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। परंतु 1988 में भारत की लोकसभा में, राज्यसभा में एक कानून का प्रस्ताव आया और वह प्रस्ताव पारित हो गया और उसको राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के बाद एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संशोधन किया गया और उसके माध्यम से हमने न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा इस चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले। परंतु हम जब मत और मताधिकार के मूल्य की बात करते हैं तो हमने देखा कई बार जो उम्मीदवार होते हैं या राजनीतिक दलों की पृष्ठभूमि होती है उसको लेकर हमारे मतदाताओं में कुछ निराशा रहती है। तो उस निराशा को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जो थी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2013 में एक अपना जजमेंट दिया जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि अगर जितने उम्मीदवार चुनाव में उतरे हैं, चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में आए हैं, अगर वह हमको पसंद नहीं है तो एक नोटा का बटन, नोटा के ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि 2013 में इस जजमेंट के बाद जितने भी चुनाव हमारे देश में हुए हैं, अगर हमें कोई भी जन प्रतिनिधि रूप में उम्मीदवार पसंद नहीं है तो हम नोटा के माध्यम से अपनी उदासीनता को दूर कर सकते हैं और अपनी बात जन जन तक, सभी प्रतिनिधियों तक, सभी राजनीतिक दलों तक पहुंचा सकते हैं कि आपने अच्छे उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा, अच्छी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को मैदान में लाएंगे तभी वह हमारे वोट का हकदार हो सकता है। और इसके तहत मैं यह भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमने पहले कुछ शब्दों की जुगलबंदी देखी थी उसी जुगलबंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा, हम देखते हैं दो शब्द, एक है उपेक्षा, दूसरा है अपेक्षा। तो जब वोट की उपेक्षा करेंगे तो सरकार से अपेक्षा करना एक अपराध बोध के समान है। जब कि हम अपने मत का प्रयोग नहीं करते, मतदान के प्रति हमारे अंदर उदासीनता है, हम उपेक्षा करते हैं चुनावी प्रणाली का, चुनावी प्रक्रिया का, तो हमारे को सरकार से किसी प्रकार का कोई फायदा, किसी प्रकार का कोई लाभ मिले जन सुविधाओं के रूप में, उसकी अपेक्षा करने का कोई भी हक नहीं बचता। तो इसी वजह से मैं चाहूंगा कि जितने भी उम्मीदवार हमारे चुनाव के मैदान में उतरते हैं, हमें देखना चाहिए कि उनमें से सबसे अच्छा जन प्रतिनिधि बनने के लायक कौन है। हमारा जन प्रतिनिधि हमारी अमूल्य निधि होनी चाहिए, हमारा जन प्रतिनिधि हमारी आवाज होना चाहिए, अच्छी पृष्ठभूमि से होना चाहिए, उसके घोषणा पत्र में कोई जनता की सुख सुविधाओं की बात होनी चाहिए, जनता के चिंतन की बात होनी चाहिए, जनता में खुशहाली किस प्रकार से आए, उस विषय को वह कितने अच्छे रूप से रख सकता है, उसके क्या इतिहास है और उसके अनुरूप हम तकड़ी में तोलकर हम उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को सभी उम्मीदवारों को देखते हुए ही अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और अगर हमें वह प्रतिनिधि जितने भी मैदान में उतरे हैं वह पसंद ना हो तो हम नोटा के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया, 2013 के बाद यह प्रावधान किया गया है, हम उस प्रावधान को प्रयोग करते हुए यह बता सकते हैं कि हम नैतिकता पे, हम ईमानदारी पे, हम किसी भी तरह से अपने जनप्रतिनिधि में कोई दाग नहीं देख सकते। हमें जनप्रतिनिधि सूर्य के समान चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं सूर्य में तेज है, सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में चेतना है, तो जिस प्रकार से सूर्य के समान चमकना है तो सूर्य के समान तपना पड़ता है, तो उस तपन को हमें अपने प्रतिनिधि में ढूंढना पड़ता है कि उसमें तपने की कितनी क्षमता है, उसमें हमारी जन समस्याओं को समाधान करने के लिए कितनी तड़फ है।
जी, बहुत अच्छे ढंग से समझाया सर आपने। उपेक्षा और अपेक्षा शब्दों का प्रयोग करके तो एकदम आपने मतलब सही कहा कि जब हम उपेक्षा करेंगे अपने कर्तव्यों की तो फिर हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं अधिकार की। बहुत सही समझाया सर आपने। और प्रशासन मजबूत बने और चुनी गई सरकार जनता के हितों के लिए काम करे, ये तभी संभव है जब देश के 100% मतदाता अपना मतदान करें, क्योंकि हमारा कीमती वोट किसी भी नेता का मूल्यांकन कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा हमें और इस विषय में बताएं कि प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण क्यों है।
जी मैडम, आपने बड़ा ही उपयुक्त प्रश्न पूछा,
क्योंकि डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि चलो एक हम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इतने लोग तो दे रहे हैं ना, तो इस चीज का आप थोड़ा सा हमें बताएं विस्तार से तो अच्छा रहेगा।
जी जी, जिस प्रकार से हम कहते हैं बूंद बूंद से बनता है सागर,
जी,
तो एक एक वोट से सरकार के गठन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हम सब दे सकते हैं।
जी,
सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा, हमारे इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां पर जीत और हार का अंतर जो है वह कुछ एक मात्र वोटों पर आकर सिमट जाता है। अगर हम ग्राम स्तर पर होने वाले पंचायत के चुनावों की बात करें तो अगर मैं आपको उदाहरण गिनाने शुरू करूं तो हमको लगता है कि हमारी समय सीमा अधूरी रह जाएगी, और आज के इस कार्यक्रम में मैं उन सभी उदाहरणों को आपके समक्ष नहीं रख पाऊंगा। और उसी श्रृंखला में अगर हम ग्राम स्तर से ऊपर उठते हुए नगर निगम का उदाहरण देखें, नगर परिषद के चुनावों का उदाहरण देखें, तो मेरे को लगता है कि सबसे उत्तम उदाहरण आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को सन 1917 का चुनाव, जो अहमदाबाद नगर निगम का चुनाव था, उसका देना उचित समझता हूँ। जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री, हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात की धरती से आते थे, उन्होंने सन 1917 में नगर निगम का चुनाव लड़ा था। उस नगर निगम के चुनाव में उनकी जो हार और जीत का अंतर था वह एक वोट पर आकर सिमट गया था। वह केवल और केवल एक वोट के अंतर से विजयी घोषित हुए थे। तो एक व्यक्ति जिसने 1917 में नगर निगम का चुनाव एक वोट से जीता था, और उसी के स्वरूप हम यह सोच सकते हैं कि जहां एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक वोट से जीत हुई थी, वहीं दूसरे प्रत्याशी की एक वोट से हार हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि कई बार हमें लगता है कि हमारा वोट किसी भी प्रकार से कोई हवा को, लहर को बदलने में सक्षम नहीं है, परंतु यह ज्वलंत उदाहरण हमें बताता है कि हर एक वोट महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में अगर मैं विधानसभा के चुनावों से उदाहरण उठाना चाहूं, तो सन 2004 में कर्नाटका के एक विधानसभा सीट पर एक उम्मीदवार जिनका कि नाम था डॉक्टर रंगास्वामी ध्रुव नारायण, वह केवल और केवल एक वोट के अंतर से विजयी घोषित हुए थे। उसके बाद दूसरा उदाहरण मैं देखता हूं तो सन 2008 में राजस्थान के विधानसभा चुनावों के दौरान कद्दावर नेता जो उस समय अपनी पार्टी के अपने दल के प्रदेशाध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे सीपी जोशी, वह एक वोट के अंतराल से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो जहां 2004 में कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी एक वोट से जीतता है, वही उदाहरण हमें राजस्थान में सीपी जोशी की हार एक वोट से हुई और उनके प्रतिद्वंदी एक वोट से विजयी घोषित हुए। तो हम देखते हैं कि चाहे चुनाव ग्राम स्तर का हो, चाहे चुनाव नगर निगम नगर परिषद के स्तर का हो या विधानसभा के राज्य के स्तर का हो, हर जगह इस प्रकार के उदाहरण हमारे समक्ष हैं, जहां हर वोट की कीमत हमको देखने को मिलती है। इसी श्रृंखला में मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा झारखंड राज्य से
जी।
जहां पर ना उससे पहले कोई ऐसा उदाहरण आया ना उसके बाद कोई ऐसा उदाहरण हमें आज तक देखने को मिला कि एक निर्दलीय उम्मीदवार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुआ
जी।
और उसने झारखंड में झारखंड राज्य का नेतृत्व किया और वह गौरव निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को प्राप्त था
जी।
तो इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि हर वोट एक एक वोट एक एक वोट जो है वह बदलाव की शक्ति रखता है, वह बदलाव की क्षमता रखता है। और इन्हीं उदाहरणों को अगर हम संसद के चुनावों की परिपेक्ष में देखें तो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसे उदाहरण आए हैं कि जहां पर संसद के चुनाव में हार और जीत का अंतर सिंगल डिजिट में आकर सिमट गया। सिंगल डिजिट से मतलब है एक वोट से लेके 9 वोट के बीच में दो मौके ऐसे आए जब एक बार आंध्र प्रदेश में सन 1989 में कांग्रेस के प्रत्याशी सिंगल डिजिट मार्जिन से विजयी घोषित हुए थे। दूसरा उदाहरण हमें मिलता है सन 1998 का, जब बिहार की एक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सिंगल डिजिट के मार्जिन से विजयी घोषित हुए थे। और तीसरा उदाहरण लोकसभा के चुनावों में मैं 2014 के चुनाव जो हुए थे उसमें लद्दाख से जो सांसद चुनकर आए थे वह केवल और केवल मात्र 36 वोटों के अंतर से जीतकर आए थे। हमको लगता है जब लोकसभा के स्तर का चुनाव होता है तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि मतदाताओं की संख्या लाखों में होती है। अगर लाखों में मतदाता हैं और उसमें हार जीत का अंतर सिंगल डिजिट पे आकर निर्णायक भूमिका में जीत और हार का फैसला करता है, यह बात इस बात की पुष्टि करती है कि हर वोट जो है वह एक वैल्यू है और वह किसी की हार और जीत में किसी के भविष्य के भविष्य का कैसा समाज हो, भविष्य की कैसी सरकार हो, भविष्य में किस प्रकार की सुविधाएं जनता को मिले, वह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी श्रृंखला में हमको ध्यान है सन 1999 का वह दिन जब राष्ट्रकवि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत एक वोट से हार गई थी और एक वोट की हार हम सब जनता के लिए बहुत ही महंगी साबित हुई थी, क्योंकि हमारे सरकारी खजाने पर उस एक वोट की हार की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का चुनाव इस जनता के जो जनराशि टैक्स के रूप से इकट्ठी की थी वह चुनाव पर मध्यावधि चुनाव पर खर्च की गई। और जो वह एक वोट 1999 में लोकसभा की सरकार को लोकसभा की सदन में लोकसभा के पटल पर सरकार को गिरा दिया था, वह एक वोट भी संशय के घेरे में आ गया था, क्योंकि उस समय जो उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गिरधर गमांग, वह 2 महीने से उड़ीसा में मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए थे, परंतु उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था और जब वह विश्वास मत के दौरान सरकार के विपक्ष में वोट डालने के लिए सदन में हाजिर हुए तो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री जीएमसी बालयोगी जी ने बोला कि आप अपनी अंतरात्मा की इच्छा से यह फैसला लीजिए कि आपकी अंदर की आवाज क्या आपको मतदान करने के लिए प्रेरित करती है, और जो आपकी अंतरात्मा की आवाज होगी वह मुझे भी मंजूर होगी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि गिरधर गमांग उस समय कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखते थे और वह उस सदन में तत्कालीन सरकार के विपक्ष में विरोध में वोट डालने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हुए सरकार के खिलाफ वोट डाला और उसी के साथ एक और वोट उस समय जो उस सरकार को गिराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे गया वह था जम्मू कश्मीर से सोफुद्दीन सोज साहब का। सोफुद्दीन सोज वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सदन में विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया था, परंतु उस समय सोफुद्दीन सोज ने अपनी पार्टी के विप का विरोध करते हुए विप के खिलाफ जाते हुए सरकार के विरोध में वह वोट डाला, जिसकी वजह से वह सरकार केंद्र की गिर गई थी और 1999 में हमने देखा कि मध्यावधि चुनाव हुए। तो हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना है, उसके मत का मूल्य हमने देखा ग्राम स्तर पर भी है, नगर निगम नगर परिषद के स्तर पर भी है, विधानसभा के स्तर पर राज्य के चुनावों में है और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लोकसभा के चुनावों में, और ना केवल लोकसभा के चुनावों में अपितु सदन के अंदर जो विश्वास मत और अविश्वास मत है उसमें भी महत्वपूर्ण है। तो हम यह बात कह सकते हैं कि जो हमारा मत है उस मत के माध्यम से ही हम अपने भविष्य का निर्धारण करने में सक्षम होते हैं। यह प्रश्न हमें अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या हम सत्ता की संस्कृति चाहते हैं या संस्कृति की सत्ता चाहते हैं, क्या हम सत्य की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं या हम एक सत्ता की संस्कृति में ही अपने आप को खुश समझते हैं। तो सत्ता की संस्कृति या संस्कृति की सत्ता या सत्य की संस्कृति हो, यही एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में आता है जब भी हम वोट देते हैं। आपके मूल्य का जो आपने बात कही है कि मताधिकार का मूल्य क्या है, दुख की बात यह है कि हम अपने मताधिकार का मूल्य आज लगाने लगे हैं, वोट को नोट से हम देखने लगे हैं। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बारंबार इस बात पर अपना ध्यान आकर्षित किया है विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से। हमको ध्यान है 2013 का वह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जिसमें कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा था कि मुफ्त में जो प्रलोभन राजनीतिक दल दे रहे हैं, जो बंदर बांट यहाँ लगी हुई है, जो लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं, वह काफी हद तक निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया को हिलाकर रख देते हैं। और उसके बाद 2015 में भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, और अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में राजनीतिक दलों द्वारा तर्कहीन मुफ्त उपहार जो प्रलोभन के रूप में दिए जाते हैं उसको तमाशे के रूप में देखने पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। जो वादे राजनीतिक दल हमें वोट पाने के लिए, वोट लेने के लिए करते हैं, वह वादे वादे बनकर रह जाते हैं, वह वादे सपने बन जाते हैं और वह सपने कभी अपने नहीं होते। यह एक गंभीर मुद्दा है और जो ये मुफ्त की बंदर बांट लोक लुभावन वादों के माध्यम से होती है, ऐसा देखा जाता है कि जो नियमित बजट है वह बहुत कम रह जाता है और जो मुफ्त की बंदर बांट से जो बजट आ रहा है वह बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ता जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने ऐसा कहा है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग अपना मत इस पे जाहिर करे कि वह क्यों नहीं राजनीतिक दलों को अपंजीकृत करता, क्यों नहीं उनके चुनाव चिन्हों को जब्त करता जो कि इस प्रकार के लोक लुभावने वायदे कर रहे हैं जिनको कि पूरा नहीं किया जा सकता। तो इस जनहित याचिका के माध्यम से जो अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय जी ने सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है, हमें उम्मीद है कि अदालतें जो हैं वह एक प्रक्रिया के माध्यम से इसी नतीजे तक पहुंचती हैं। परंतु हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर जिस प्रकार से हमने संवैधानिक लोकतंत्र की बात की, इस संवैधानिक लोकतंत्र में लोक जो हैं वो लोगों का राज है, जिसको कि अब्राहम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो इस गौरवमयी गणमान्य गणतंत्र में मताधिकार, मतदान ना केवल एक अधिकार है अपितु हमको लगता है कि वह अधिकार से कहीं अधिक एक कर्तव्य है, एक दायित्व है। परंतु उसके कर्तव्य होने का, उसके दायित्व होने का बोध आज हमारी जनता को हो, आप आज वह बोध हम में हो, आप में हो, हम सब में हो, तभी उसकी सार्थकता निकल कर सामने आएगी। क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया हो सकता है कुछ समय लगे, परंतु एक जो अदालत है वह चुनावी परिपेक्ष में जनता की अदालत होती है, जनता को फैसला करना है, जनता को चिंतन करना है और उस चिंतन के माध्यम से चेतना आनी चाहिए कि क्या इस प्रकार के वादे जो निभाने के लिए किए ही नहीं जाते, वो वादे जो तोड़ने के लिए किए जाते हैं, क्या हम उन झूठे वादों के बहाव में बह जाएं? क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है लोकतांत्रिक प्रणाली में। तीसरी अदालत जो मैं समझता हूँ वह परम पिता परमेश्वर की अदालत है, भगवान की अदालत है।
बिल्कुल,
दैव शक्ति के रूप में जिस भी धर्म में हम आस्था रखते हो, जिस भी ग्रंथ में हम आस्था रखते हो, चाहे वह गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या ग्रंथ हो, चाहे हम राम को मानते हैं, रहीम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहे गुरु को मानते हैं या यीशु को मानते हैं, हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम जनता की बात करना चाहते हैं, हम लोकतंत्र के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, तो क्या जो वादे किए जा रहे हैं, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, वह कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, किस मंशा से किए जा रहे हैं, उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको नजरअंदाज करेंगे तो हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
बिल्कुल,
हम मत का प्रयोग इसलिए करें कि हम अपनी देश की दशा को सुधार सकें, हम अपने देश की दिशा का निर्धारण कर सकें। तो दिशा और दशा इन दोनों का चुनाव हम अपने मतदान से करते हैं, इसीलिए यह हमको एक दायित्व लगता है, कर्तव्य लगता है और इसका बोध हम सबको होना चाहिए। अगर हमें इस बात का बोध होगा तो हमारा भारत, हमारा देश भारत तेजस्वी भारत, ओजस्वी भारत बनेगा, हमारा देश भारत वैभवशाली भारत, प्रभावशाली भारत बनेगा, हमारा भारत देश गौरवमयी भारत, गणमान्य भारत बनेगा, हमारा देश भारत, उभरता भारत, चमकता भारत बनेगा, हमारा देश भारत, मेरा देश भारत, हम सबका देश भारत, आत्मनिर्भर भारत बनेगा।
बहुत अच्छी बात कही सर आपने, और इतने सटीक उदाहरण देकर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है, और आपकी इस बात को सुनकर मेरे सहित हमारे सभी श्रोता भविष्य में कभी भी चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए चुनाव के दिन घर में ही रहने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि परिवार के साथ घर से बाहर निकलकर अपना कीमती वोट डालेंगे और चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है सर।
जी, क्योंकि हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, वह चरवेति चरवेति के मूल मंत्र की है।
जी, बिल्कुल।
हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है, तो वह आगे चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें अपने सुख चैन को छोड़कर अपने घर की चार दीवारियों से बाहर निकलते हुए अपने इच्छाओं को, अपने हर्षो उल्लास को चुनाव की प्रक्रिया में शामिल कर कर आनंदित और अनुभूत महसूस करना चाहिए।
जैसा आपने कहा कि व्यवस्था की कमियों को ना हम गिनाएं, पहले हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। और सर जाते जाते हमारे चुभन के श्रोताओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैडम, मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनके अंदर वीर रस है, जिसके माध्यम से, जिस वीर रस के माध्यम से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो। हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी एक कविता, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं के साथ उस कविता को साझा करना चाहूंगा।
बिल्कुल।
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
बहुत अच्छा सर, आपने तो वाकई हमारे अंदर उत्साह संचारी भाव का संचार कर दिया।
जय जयकार मैडम, उत्साह से ही हो सकती है।
बिल्कुल, बिल्कुल।
हमारे योगदान से ही हो सकती है, और उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए।
जी,
तभी लोकतंत्र की जय होगी, तभी भारत की जय जयकार होगी।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे आने वाले 5 वर्ष कैसे बीतेंगे ये हमारा एक वोट ही तय करता है, तो फिर क्यों ना हम इसको अच्छे से दें और अपने पूरे कर्तव्यों का पालन करें।
जी
जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी सर, और आगे भी आप हमें ऐसे ही मार्गदर्शन हमारा करते रहे, हम ये चाहेंगे आपसे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
जी,
सभी श्रोताओं का भी आभार जिन्होंने आज इस चर्चा में हम सबका साथ दिया। सभी को प्रणिपात, सभी को साधुवाद।
जी सर, आपका बहुत बहुत आभार।
कोटि कोटि प्रणाम।
नमस्कार सर।
नमस्कार मैडम।